జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద కల్ హమ్నే సునా థా कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कपिल देव के भाव में आते हैं और अपनी माता सची देवी को क्या करते हैं, सुनाते हैं, उपदेश देते हैं जीव की दयनीय स्थिति का जो माँ के गर्भ में निवास करता है और कई प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है। तो आगे श्री चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में हैं और आगे कह रहे हैं उनकी माता को, कथो दिने काल वशे हय बुद्धि ज्ञान इथे जे भजय कृष्ण से ही भाग्यवान। तो पीछे वर्णन आया था कि जो जीव है माँ के गर्भ से बाहर आता है और बहुत दयनीय स्थिति से वो गिर पड़ता है जमीन पर, और फिर जो भाग्यवान है वो ये अनुभव करता है या उसे ये बुद्धि या वो ज्ञान होता है कि जो कृष्ण का भजन करेगा वो भाग्यवान है। अन्यथा न भजे कृष्ण दुष्ट संग करे पुनः से ही मत माया पापी डूबे मरे। तो कुछ लोग जो कॉन्शियस होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो अनकॉन्शियस होते हैं स्थिति के बारे में। तो जो लॉर्ड चैतन्य कहते हैं कि कुछ लोग जो बहुत भाग्यवान हैं या जो बुद्धिमान हैं उनको ज्ञान हो जाता है जन्म लेने के बाद और वो कृष्ण का भजन करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कृष्ण का भजन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो दुष्टों का संग करते हैं, असत संग। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि वैष्णव का आचरण क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, कि जो वैष्णव है वो असत संग से दूर रहता है और अपने आप को हमेशा सत्संग में रखता है, कृष्ण भावना के संग में रखता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उस स्थिति का वर्णन करते हैं आगे, और वो कहते हैं, अनायासे मरण जीवन दुख बिने कृष्ण भजिले से हय कृष्ण रसमरणे। तो इस प्रकार से व्यक्ति अनायास में अचानक उसे मरण आता है या कई प्रकार के जो दुख वो अनुभव करता है और उसके फल स्वरूप वो कृष्ण का स्मरण कर पाता है, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। यते के बजह कृष्ण साधु संग करी मने चिंता कृष्ण माता मुखे बल हरी। तो साधु संग की महिमा का वर्णन करते हुए निमाई पंडित कहते हैं कि हे माता, तुम कृष्ण का भजन करो लेकिन अकेले नहीं। कैसे करो कृष्ण का भजन? साधुओं के संग में रह के कृष्ण का भजन करो। तो जैसे रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा दुख क्या है, तो चैतन्य रामानंद राय ने कहा कि भगवान के भक्तों का संग से दूर हो जाना, भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलना, यही संसार का सबसे बड़ा दुख है। वो कहते कि मने चिंता कृष्ण माता मुखे बोलो हरि, कि हे माँ दोनों काम करो, मन से कृष्ण का चिंतन भी करो और मुख से क्या बोलो, हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे। इस प्रकार की से सच्ची माता को प्रचार कर रहे हैं पुत्र निमाई पंडित। भक्ति ही न कर्मे को न फल ना ही पाए, से ही कर्म भक्ति ही न पर हिंसा जाए। तो कोई भी जो कार्य है कृष्ण भक्ति के बिना वो रिजल्ट नहीं प्रदान कर सकता, और जो कृष्ण भक्ति के अलावा जो भी कार्य है वो एक प्रकार से हिंसा ही है। कपिले रभावे प्रभु माये रे शिखाए, सुनी से ही वाक्य सची आनंद मिलाए। तो महाप्रभु कपिल देव के भाव में होते और महाप्रभु से इतनी सारी शिक्षा सुनी सची माता ने, तो उनको बहुत आनंद हो गया और अधिक आनंदित हो गई। कि भोजने कि शयने कि बा जागरने, कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु न बाखाने। तो ये महाप्रभु का कृष्ण आलाप, उनके मुख से कृष्ण कथा कैसे निकलती थी इसका वर्णन करते हैं कि अभी उनकी स्थिति ऐसी हुई थी कि चाहे भोजन कर रहे हैं या फिर महाप्रभु सो रहे हैं या जगे हैं, तो कृष्ण बिनु प्रभु आर किछु न बाखाने, कृष्ण के अलावा उनके मुख से कोई भी चीज और निकलती नहीं थी, कृष्ण से संबंधित वार्ता है उनके मुख से निकलती थी। आप तो मुखे ये कथा सुनिया भक्तगण, सर्वगने वितर्क भावे न मने मान। तो कई अपने संबंधियों के माध्यम से भक्तों ने इस बात को सुना था कि चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की स्थिति है कि वो पूरी तरह से बदल गए हैं और वो केवल कृष्ण से संबंधित बातें करते हैं और कृष्ण की भावना में हर समय मग्न रहते हैं। तो कई भक्त लोग मन में ही सोचने लगे, तो क्या सोच रहे थे भक्त लोग, कि वह कृष्ण प्रकाश है इला से शरीर है, कि वह साधु संगे कि वह पूर्वे संस्कार है। तो वो कहते हैं कि शायद जो कृष्ण है इस निमाय के शरीर में अवतरित हो गए हैं या प्रकाशित हो गए हैं, या फिर जो साधु संघ का ये प्रभाव है कि जिनके कारण निमाय के मुख से कृष्ण के अलावा दूसरी और कोई चीज निकलती नहीं है, या तो फिर भक्त सोचते थे कि इसका पूर्व जन्म का फल है, पूर्व सुकृति है कि पहले इसने बहुत ज्यादा भक्ति की होगी इसी कारण अभी केवल यह कृष्ण के बारे में बोलता रहता है या सुनता रहता है। यही मत मने सबे करे न विचार, सुखमय चित्त वृत्ति है लसबार। तो इस प्रकार से निमाय पंडित के बारे में ये सब लोग सोचते हैं, और ये सोचने मात्र से कि निमाय का इतना अनुराग है कृष्ण कृष्ण कहने में, और ये सोचने मात्र से जितने भक्त थे नवद्वीप में उनका हृदय में बहुत अधिक आनंद का अनुभव होने लगा। खंडिल भक्तेर दुख पाषाणीर नाश, महाप्रभु विश्वम्बर हैल प्रकाश। तो जब अभी निमाय पंडित ने कृष्ण भावना का प्रकाश किया था, जैसे प्रभुपाद को कई बार पूछते थे कि आपका यह आंदोलन कितना पुराना है, तो प्रभुपाद नहीं कहते थे कि अभी अभी शुरू हुआ है, प्रभुपाद कई बार कहते थे कि ये कई हजारों साल पुराना है, कृष्ण ने शुरू किया था 5000 साल पूर्व, या तो फिर कहते थे चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पुराना है हमारा आंदोलन। तो अभी नवद्वीप में निमाय पंडित ने ये कृष्ण भक्ति का प्रकाश किया था, जिसके द्वारा जो नवद्वीप में जो भी भक्त थे उनके दुखों का नाश हो गया था, और जो पाषाणी थे कपटी थे उनका नाश हो गया था। वैष्णव आवेश महाप्रभु विश्वम्बर, कृष्णमय जगत देखय निरंतर। तो वैष्णव के आवेश में महाप्रभु पूरे जगत को कृष्णमय देखते थे, कृष्णमय में सब जगह वो कृष्ण से संबंधित चीजों का दर्शन करते थे। अहर्निश श्रवणे सुनये कृष्ण नाम, वदने बोलये कृष्ण चंद्र अविराम। तो महाप्रभु की इस बात को बताते हैं कि अहर्निश, अहर मीन्स दिन में और निश मीन्स रात को, दिन रात अहर्निश श्रवणे सुनये कृष्ण नाम, महाप्रभु दिन रात अपने कान से कृष्ण के दिव्य नाम को सुनते थे और वदनय बोले कृष्ण चंद्र अविराम। अविराम मीन्स जिसमें कोई विराम नहीं है, विराम मीन्स फुल स्टॉप नहीं है। हर समय उनके मुंह से कृष्ण चंद्र का गुणगान होता था या कृष्ण के नामों का उच्चारण होता था। जय प्रभु आछिला भोला महाविद्या रसे एवे कृष्ण विनुआर किछु नाही बासे। तो अभी क्या हुआ था कि निमाय का जो पहला स्वभाव था और अभी का उनका जो स्वभाव है या कार्यकलाप है ये पूरी तरह से चेंज हो गए थे। शुरुआत के दिनों में वो विद्या के रस में पूरी तरह से मग्न रहते थे लेकिन अभी बिल्कुल ही उल्टा हो गया है। वो विद्या रस को तो भूल ही गए लेकिन कृष्ण रस, कृष्ण के बिना किसी और रस का आस्वादन नहीं करते थे और कृष्ण रस में हर समय डूबे रहते थे। पढ़ुयार वर्ग सब अति उष काले परिवार निमित्त आसिया सबे मिले। तो उस एक दिन क्या हुआ कि सुबह सुबह जितने उनके स्टूडेंट्स थे वो सुबह सुबह आए, किसलिए? उनसे पढ़ने के लिए, उनसे सीखने के लिए। पढ़ाई ते वैसे गया त्रिजगत राय कृष्ण बिनु किचुआर ना आए से जिवाय। तो इन्होंने तीन जगतों के जो स्वामी हैं कृष्ण लॉर्ड चैतन्य वो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिष्यों को पढ़ाने के लिए बैठे लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि उनके मुख से उनकी जो जिवा है कृष्ण के अलावा किसी और चीज के बोलती नहीं थी। हाँ, तो इतना वो जिवा को ये आसक्ति हो गई थी कृष्ण कथा के प्रति। तो फिर अभी कई सारे शिष्य जब बैठे थे तो कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगे निमाय पंडित को। सिद्ध वर्ण समम नाय बले शिष्यगान प्रभु बोले सर्व वर्ण सिद्ध नारायण। तो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है ग्रामर का, संस्कृत ग्रामर का, जिसमें सिद्ध वर्ण समम नाय की क्या व्याख्या है ये पूछते हैं। तो कहते हैं कि ये सारे वर्ण सिद्ध हो गए हैं क्योंकि नारायण से संबंधित हैं। शिष्य बोले वर्ण सिद्ध है लके मने प्रभु बोले कृष्ण दृष्टि पाते र कारणे। तो जो व्यंजन वर्ण होते हैं हम जो पढ़ते हैं स्कूलों में, तो उन्होंने पूछा कि ये सिद्ध कैसे हुए। तो उन्होंने कहा कि उनके ऊपर नारायण का दृष्टिपात हुआ है। तो ये सब बच्चा भी पूरी तरह से भ्रमित हो रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ। शिष्य बोले पंडित उचित व्याख्या कर। अरे पंडित जरा उचित व्याख्या कर, जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसको सही ढंग से तो समझाओ। प्रभु बोले सर्वक्षण श्री कृष्ण स्मरण। कहते हैं कि तुम आप सब बस सारे समय में कृष्ण का स्मरण करो, ये उनका उचित व्याख्या था और वास्तव में सही है। कृष्ण र भजन कहे सम्यक आमनाय आदि मध्य अंत्य कृष्ण भजन बुझाय। तो कहते यही सही व्याख्या है कि कृष्ण का ही भजन करना चाहिए। सारे शब्द सारे जो वाक्य हैं वो हमें कृष्ण के भजन की ओर ले आते हैं और आदि मध्य और अंत में सारे ग्रंथों में सारे किताबों में यही शिक्षा है कि कृष्ण का ही भजन व्यक्ति को करना चाहिए। सुनिया प्रभु र व्याख्या हसे शिष्यगण केह बले है न बुझे वायु र कारण। तो एक प्रकार से उन शिष्यों की बुद्धि अभी भ्रष्ट हो गई है और वो जैसे ही निमाय ने इस व्याख्या की कि कृष्ण का भजन करना चाहिए तो सारे जो शिष्यगण है वो हंसने लगे जोर जोर से और कहने लगे कि ये निमाय ये बीमारी हो गई है, इसको वायु रोग हो गया है। जैसे वायु कफ वात पित्त इनमें से जो वायु है तीनों में से जब वायु बिगड़ जाता है शरीर का तो व्यक्ति पागल की तरह बड़बड़ता है, पागल की तरह कार्य करता है, कभी मूर्छा के गिरता है कभी उठता है। तो महाप्रभु की जो भी लक्षण दिखाई दे रहे थे वो ऐसे ही लग रहे थे कि वायु रोग इनको हो गया है। शिष्य वर्ग बले एबे केमत बाखान प्रभु बोले जन हय शास्त्र प्रमाण। तो कहते कि आप क्या, शिष्य कहने लगे आप क्या ये सब बातें करते हो। तो महाप्रभु कहते नहीं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है इस बात को, शास्त्र में इन सब चीजों का वर्णन है। प्रभु बोले जदि नहीं बुझ एकने विकाले सकल बुझा एव भाल मने। तो निमाय पंडित ने कहा यदि मेरी बात को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, विकाले आओ, मीन्स दोपहर को फिर से आना, संध्या के समय 3-4 बजे, और फिर ठीक से समझ में आएगा। आमिह विरले गिया बसी पुठी चाय, विकाले सकले जन एक हय एक ठाय। तो इन्होंने कहा कि, निमाई ने कहा कि मैं अभी एकांत में जाकर बैठता हूँ अपना किताब लेके, और आप सब लोग दोपहर के समय या संध्या के समय सब एकत्रित होकर मेरे पास आइए और मुझे समझाइए। सुनिया प्रभु वाक्य सर्व शिष्टगण, कौतुक के पुस्तक बांधी करे लागमान। तो इस प्रकार से निमाई की इस बात को सुन के सारे बच्चों ने अपनी किताबें बांध ली। उस समय ऐसे नहीं कि बैग होते थे, नहीं, वो एक कपड़े में उनके कुछ किताबें बांध के ले आते थे। हाँ, मायापुर गुरुकुल में अभी भी हैं, और उनका वो सामान भी वैसे ले जाते बच्चे। जब हम गंगा सागर मेले में गए थे तो 20-25 बच्चे जो गुरुकुली छोटे छोटे वो भी गए थे, तो उन्होंने अपने धोती कुर्ता और जो भी आवश्यक चीजें हैं चदर जैसे ऐसे उसमें पूरा बांध के और उसका जो गट्टा बन जाता है वो अपने सर में लेके चलते थे, और उनके हाथ में एक हाथ में खड़ा होता था सर के ऊपर, ऐसे चलते थे छोटे छोटे पीले ड्रेस में बच्चे, और इतने अद्भुत लगते थे कि हर कोई बंगाल का हर कोई व्यक्ति उनको देखता था। हाँ, क्योंकि चलने में बहुत, अभी सब ब्रह्मचारी और कई बड़े बड़े सीनियर भक्त चल रहे, तेजी तेजी से बच्चे खड़ा में नहीं चल पाते थे, तो अपने खड़ा को हाथ में लेते थे और सर में वो और चलते थे। और कई तो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपना बैग पीछे डाला था और स्लीपिंग बैग सर के ऊपर एक हाथ में पकड़ के और एक हाथ में खड़ा लेके ऐसे तीव्रता से चलते थे। हाँ, तो ये बहुत, ये सब जो गुरुकुल में बच्चे हैं मायापुर में, ऐसा मुझे तो महसूस हुआ जब उन्होंने इतनी तपस्या में जीवन बिताया वहां गंगा सागर मेले में। हम 10 दिन के लिए थे और वह इतना ठंड था, फिर भी सुबह 3 बजे या 3:30-4 बजे उठ के समंदर में जाते थे स्नान करने उनके टीचर के साथ अंधेरे में, और आते थे फिर वो स्नान करते थे यहाँ कैंप में, और फिर दिन में और फिर मंगल आरती में नाचते थे, फिर भागवतम जपा, और फिर जब प्रसाद के बाद जो भी इनके कपड़े धोने हैं कुछ करने हैं, तो इतने छोटे छोटे बच्चे कि वो स्वयं ही कर लेते थे अपना, मतलब फुल फ्लेज ब्रह्मचारी जैसा यहाँ करता है ब्रह्मचारी आश्रम में, वैसे ही वो वहां पूर्ण तीव्रता से, ऐसा नहीं कि कोई रो रहा या कोई ढीला हो गया, नहीं, बहुत उत्साह है। हाँ, तो मैं जब इनको देखता था मुझे लगता था ये महान ऋषि हैं, सारे ऋषि मुनि हैं पूर्व जन्म के जो अभी इतनी तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं। ओह अच्छा, तो इनको किसी ने कहा कि एक जो गुरुकुली बच्चा है वो 10 सन्यासियों के समान है। अच्छा, तो ये सामान्य नहीं है, बचपन से ही कृष्ण भक्ति में इतनी तीव्रता और इतने उत्साह के साथ सारे नियमों का पालन करना। तो अभी ये बच्चों ने सारी अपनी किताबें निमाई के जो शिष्यगण थे बांधे और वो निकल गए। सर्व शिष्य गंगादास पंडित तेरा स्थाने कहिले न सब जत ठाकुर बाखाने। तो नवदीप में बहुत सारे टोल होते थे, टोल मीन्स स्कूल, तो उसमें ये गंगादास का टोल था जहाँ एडमिशन लिया था चैतन्य महाप्रभु ने एक स्टूडेंट के रूप में। लेकिन ये स्टूडेंट कोई सामान्य स्टूडेंट नहीं था, गुरु जो बोलता था उसकी व्याख्या करके गुरु ही डर जाते थे, और गुरु ने फिर इनको ही सिखाने के लिए लगा दिया कि जो मेरे स्कूल में आते हैं बच्चे स्टूडेंट उनको तुम सिखाना शुरू करो। तो अभी ये सब बच्चे किसी और टीचर से नहीं सीखना चाहते थे, तो केवल उनको निमाई पंडित से बहुत अच्छा लगता था सीखना। तो फिर अभी देखा कि निमाई पंडित तो कुछ और कृष्ण के अलावा कुछ बोलता ही नहीं है, सारे जो व्याख्या है व्याकरण वगैरह की सबको कृष्ण से संबंधित बोलता है। तो ये सारे शिष्यगण अभी उस गंगादास पंडित के पास जाते हैं जो मेन प्रिंसिपल है उस कॉलेज के या स्कूल के। ये भेजत बाखाने न निमाई पंडित शब्द सने बाखाने न कृष्ण समेहित। तो कहने लगे कि निमाई जो भी चीजें वर्णन करता है वो हर शब्द के साथ या हर शब्द को कृष्ण के पास ले आता है या हर शब्द के साथ कृष्ण को जोड़ देता है। गया है ते जावता से याचे नगरे तदवधि कृष्ण भये व्याख्या नाही स्फुरे। तो ये सब बच्चे कंप्लेंट करने लगे, उनकी क्या कंप्लेंट करने लगे कि जब से ये निमाई पंडित गया से वापस आया है तब से क्या हुआ है, इसको जो भी व्याख्या करता है कृष्ण के अलावा कुछ और चीजें स्फुरित नहीं होती। हाँ, इसको सर्वदा बलेन कृष्ण पुलकित अंग क्षणे हर्ष हुंकार करे बहुरंग। और हर समय कृष्ण के बारे में बोलता है और जैसे कृष्ण कृष्ण कहने लगता है तैसे उसी समय उसके शरीर में जो अंग है वो पुलकित हो जाते हैं, कभी हंसता है कभी रोता है कभी जोर से चिल्लाता है, तो इस प्रकार से नाना रंग प्रकट करता है। प्रतिशब्द धातु सूत्र एकत्र करिया प्रतिदिन कृष्ण व्याख्या करे न भसिया। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि हर रोज हर जो धातु है उसकी जब व्याख्या करता है तो वो कृष्ण से जोड़ देता है। एवेता न बुझी बारे ना परिचरित की करिवामी सब बलह पंडित। फिर सब शिष्यों ने कहा कि हे गंगादास आप बताइए कि हम क्या करें अभी, क्योंकि हम इसके कार्यकलापों को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे किसी कॉलेज में ऐसे हो जाए कि जहाँ टीचर ऐसे करने लगे तो बहुत कठिनाई हो जाएगी, सारे अखबारों में टेलीविजन में सब में चर्चा होगी। फिर सारे बच्चे जाके इनको कंप्लेंट की तो गंगादास अभी कहते हैं उपाध्याय शिरोमणि विप्र गंगादास सुनिया सवार वाक्य उपजिलहास। तो जो सारे टीचर्स में जो हेड है गंगादास पंडित उन्होंने ये चीज सुनी कि निमाय पंडित इस प्रकार से व्याख्या करता है तो वो हंसने लगे जोर जोर से। ओझा बोले घरे जहा आसी हस काले आजिया में शिखाई बताहारे बिकाले। तो निमा गंगादास ने कहा कि आप सब जो स्टूडेंट्स हैं वो चले जाओ घर और मैं आज निमाय को शिक्षा देता हूँ। भालमत करी जन पढ़ाए न पुथी आसी हाँ बिकाले सब तहार सहती। कि आप सब जाइए और अच्छी तरह से पुथी को पढ़िए जो भी ग्रंथों को पढ़िए और आप उसके साथ निमाय के साथ आ जाइए वापस दोपहर के समय। परम हरिष सबे बासाय चलिला विश्वम्बर संगे सबे बिकाले आईला। तो बहुत खुश होकर सारे जो शिष्यगण हैं अपने अपने स्थान में चले जाते हैं और विश्वम्बर के साथ दोपहर के समय या संध्या के समय वापस आते हैं। गुरु चरण धुले प्रभु लय शिरे विद्या लाभ हवु गुरु आशीर्वाद करे। तो जैसे आते हैं गंगादास के पास तो गंगादास के चरणों को छूते हैं निमाय पंडित और उनको आशीर्वाद देते हैं। क्या विद्या लाभ हवु, कि आपको विद्या का जो लाभ है वो हो जाए या विद्या की प्राप्ति हो जाए। गुरु बोले बाप विश्वम्बर सुन वाक्य ब्राह्मणेर अध्ययन नहे अल्प भाग्य। तो कहने लगे कि हे विश्वम्बर मेरी बात को सुनो, किसी जो ब्राह्मण है उसे कोई अल्प सौभाग्य नहीं है अध्ययन करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। कोई ब्राह्मण अध्ययन करता है जिसमें अध्ययन जिसका अध्ययन में रुचि है। माता महाजार चक्रवर्ती नीलांबर बाप जार जगन्नाथ मिश्र पुरंदर। कहते कि देखो तुम कोई छोटे मोटे कुल से नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे माता के जो पिता हैं उनका नाम क्या था, नीलांबर चक्रवर्ती, जो इतने बड़े विद्वान हैं, और तुम्हारे पिता कौन है, जगन्नाथ मिश्र पुरंदर, ये उनकी पदवी मिली थी जो बहुत बुद्धिमान थे। उभय कुलेते मूर्ख नाही कतोमार तुम्ही ओ परम योग्य व्याख्या ने टिकार। और इसी बात से समझो कि तुम्हारे माँ के कुल के और भी कोई लोग मूर्ख नहीं है और तुम्हारे पिता के घर में भी कोई मूर्ख नहीं है, तो और तुम भी कोई मूर्ख नहीं हो, तुम भी तो बहुत टीकाएं करते हो और तर्क वितर्क करने में भी बहुत एक्सपर्ट हो। अध्ययन छाड़ी ले से जदि भक्ति हाय बाप माता महा की तो मारा भक्त न है। कि यदि केवल अध्ययन करना छोड़ने से भक्ति होती है तो फिर ये क्या उचित है कि तुम्हारे माता पिता क्या तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे नीलांबर चक्रवर्ती वो क्या भक्त नहीं थे, या फिर तुम्हारे जो पिता जगन्नाथ मिश्र थे क्या वो भक्त नहीं थे। यदि शास्त्रों का अध्ययन छोड़ दें छोड़ने से ही भक्ति होती है क्या, इस प्रकार से उनको समझाते हैं। यहाँ जानी भाल मते कर अध्ययन अध्ययन हैले से वैष्णव ब्राह्मण। कहते कि ठीक प्रकार से अध्ययन करो, क्योंकि वैष्णव जो ब्राह्मण है वो वैष्णव हो जाता है जब वो अध्ययन करता है शास्त्रों का अच्छी तरह से, क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्म को जानता है और वैष्णव परम ब्रह्म को जानता है। भद्र भद्र मूर्ख द्विज जानी बेके मने, यहाँ जानी कृष्ण बल कर अध्ययने। तो यदि तुम मूर्ख ब्राह्मण बनोगे तो फिर क्या सही है और क्या गलत है ये तो तुम नहीं जान पाओगे। हाँ तो इसलिए हाँ तुम अध्ययन करो। हाँ कृष्ण बोलते बोलते भालमते गया शास्त्र बसिया पढ़ाओ, व्यतिरिक्त अर्थ कर मोरा मोरा माथा खाओ। तो कहते हैं कि आप तुम अच्छी तरह से जाओ और इन सब स्टूडेंट्स को उनको पढ़ाओ अच्छी तरह से, और कुछ विपरीत अर्थ मत करो सारी शिक्षाओं का। हाँ तुम्हें मेरी सौगंध है, माथा मत खाओ मेरा, मतलब एक तो हम कहते माथा मत खाओ मतलब मुझे तंग मत करो, और यहाँ कहते कि आप मेरी सौगंध है आपको, हाँ शपथ है। प्रभु बोले तुम्हारा द्वि चरण प्रसादे, नवद्वीपे के हमोरे ना पारे विवादे। अभी इनको फिर से इतना अहंकार आ गया जब से गुरु ने डांट लगाई, तो फिर जैसे गुरु आपको डांट लगाते किसी और के कारण, तो आपको उस व्यक्ति के प्रति बड़ा गुस्सा आ जाता है कि देखता हूं अभी उसको। तो जब इनको डांट पड़ी गंगादास पंडित से निमाई पंडित को, तो निमाई पंडित कहने लगे कि हे गुरुदेव गंगादास पंडित, आपके आपके चरणों का मेरे ऊपर कृपा है, लेकिन एक क्या कृपा है कि नवद्वीप में मेरे जैसा कोई पंडित नहीं है, कोई विद्वान नहीं है, केवल आप ही एक हो जो मुझे हरा सकते हो। हाँ लेकिन कोई और मुझे हरा नहीं सकता है। आमे जे बाखानी सूत्र करे या खंडन, नवद्वीपे तहा स्थापी बेक को न जान। तो मैं जो सूत्र की व्याख्या करूंगा, कौन ऐसा नवद्वीप में है जो उसको खंडन कर सकता है मेरे सामने आकर, हाँ कौन उसकी स्थापना, और मैंने किसी व्याख्या का खंडन किया है तो कौन ऐसा नवद्वीप में है जो आके उस व्याख्या को स्थापित कर सकता है। तो ये महा इधर निमाई का अहंकार उक्ति, वाणी कैसे अहंकार प्रकट होता है। नगरे बसिया ये पढ़ाए मुगिया, देखी कार शक्तिया छे दूषिक दूषिक आसिया। तो अभी मैं नगर में जाकर पढ़ने के लिए बैठता हूँ और मैं देखता हूँ कि किसमें शक्ति है जो मेरी व्याख्या में दोष निकाल सके। तो इस प्रकार से निमाई पंडित ये अहंकारमय भाषा बोलते हैं और निकलते हैं। हरिश हैला गुरु सुनिया वचन, चलिला गुरु रूप करे चरण वंदन। तो इस बात को सुनकर कि अभी निमाई फिर से रिचार्ज हो गए हैं या सर चार्ज हो गए हैं, फिर से पहले जैसी भावना उनके अंदर जागृत हुई है, तो गंगादास पंडित बहुत खुश हो गए और पंडित ने गंगादास को वंदन किया उनके चरणों में और वो निकल पड़े बाहर। गंगादास पंडित चरणे नमस्कार, वेदपति सरस्वती पति शिष्य जार। तो वृंदावन दास ठाकुर गंगादास पंडित के सौभाग्य की तुलना वो वर्णन करते हैं, कहते कि गंगादास पंडित इतने महान हैं कि हम उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सरस्वती के सरस्वती जो वेद पति है, मतलब सरस्वती जो सारे वेदों को जानती हैं, उनके भी पति जो चैतन्य महाप्रभु हैं, वो गंगादास के शिष्य बने हैं। आरके वा गंगादास पंडित तेरा साध्य। तो गंगादास पंडित के जीवन में और क्या साध्य है, मतलब जो गोल या अचीवमेंट है, इससे बड़ी क्या और अचीवमेंट हो सकती है गंगादास पंडित के जीवन में। जार शिष्य चतुर्दश भुवन आराध्य, की जिनके शिष्य जो चार चतुर्दश 14 भुवन, हाँ 14 भुवन के सारे जो लोग हैं या देवी देवताएं हैं जिनकी आराधना करते हैं, ऐसे चैतन्य गंगादास पंडित के शिष्य बने हैं। चलिला पढ़ुया संगे प्रभु विश्वंबर, तारका वेष्टित जन पूर्ण शशधर। तो ये सारी लीला जहाँ अभी जन्म स्थान है और जहाँ इस्कॉन वगैरह है, मदाही घाट अपने परिक्रमा में देखा होगा, तो उसके आसपास ही ये सारी लीलाएं हुई हैं नवद्वीप में या मायापुर में। तो निमाई पंडित सारे अपने स्टूडेंट्स के साथ निकले और ऐसा महसूस हो रहा था कि सारे तारकाओं से वेष्टित एक चंद्रमा है बीच में। बसिला आसिया नगरे यार दुयारे, जहार चरण लक्ष्मी हृदय ऊपरे। तो इस प्रकार से निमाई पंडित उन सारे स्टूडेंट्स के साथ आए और एक साधारण नागरिक के दरवाजे पर किसी के घर के सामने जाकर वो बैठ गए अपने स्टूडेंट्स को बिठाकर। योग पट्ट छांदे वस्त्र करे या बंधन सूत्रे रे प्रभु खंडन स्थापन। तो निमाय ने क्या किया था, अभी बहुत अहंकार के कारण जो योग पट्ट जो सन्यासी धारण करते हैं ऊपर वाला कपड़ा उसको योग पट्ट कहते हैं। तो ये वैसे ही निमाय ने योग पट्टों को ठीक से बांधा, जो जैसे कई पंडित लोग यहाँ वो रखते जैसे हम लोग चद्दर रखते हैं, तो ऐसे बांध दिया ठीक से। और फिर इतनी व्याख्या करने लगे और कई बार उस व्याख्या को खंडन करते थे फिर व्याख्या को स्थापन करते थे। प्रभु बोले संधि कार्य ज्ञान नाहे जार कलियुगे भट्टाचार्य पद वितहार। तो अभी इतनी निंदा करने लगे और इतना सबको डांटने लगे कि नवदीप में तो आए पाखंडी टीचर बैठे हैं, कई सारे सबने डिग्री प्राप्त की है भट्टाचार्य डिग्री, क्या जिनको संधि का ज्ञान नहीं है। हाँ, संधि मीन्स संधि विच्छेद होता है ना, जैसे सुख दुख है, तो सुख और दुख, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं, इसी का ज्ञान नहीं है। ऐसे नवदीप में कई सारे शिक्षक हैं जिन्होंने केवल पदवी धारण करके रखी है। शब्द ज्ञान नाहे जार से तर्क बाखाने आमारे त प्रबोधिते नारे कोन जने। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको शब्दों का ज्ञान भी नहीं है लेकिन वो तर्क करने के लिए आगे आते हैं। और लेकिन मैं देखता हूं कि कौन समर्थ है जो मेरे पास आकर बोल सकता है। जे आमी खंड न करे जे कर स्थापन देखिता अन्यता करू को न जान। तो फिर अभी इतना अहंकार से वो बोलने लगे कि मैं देखता हूं कि जिस चीज को मैं खंडन करता हूं कौन है पूरे नवदीप में जो आके स्थापित कर सकता है। मैं देखता हूं कहते आने दो उसे। यही मत बल विश्वम बर विश्वनाथ प्रत्युत्तर करिबे कहे न शक्ति का। तो इस प्रकार से जो विश्व के नाथ विश्वम्बर है इस प्रकार से बोलने लगे, गर्जना करने लगे अपने स्टूडेंट्स के बीच में। और तो उनको प्रत्युत्तर देने के लिए उनकी इस वाणी को फिर से कोई बोलने के लिए कोई भी किसी के पास शक्ति नहीं थी। गंगा देखी बारे जत अध्यापक जाए सुनिया सबार अहंकार चूर्णहाय। तो इतना बोल रहे थे इस टीचर्स के बारे में। तो ये लोग ऐसे घर के पास थे कि जहां गंगा में जाने का रास्ता था, तो सामने बैठे थे। तो कई दिन में वर्णन आता है कि हजारों लाखों लाखों टीचर होते थे वहां, फिर स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो उस समय ये जो नवदीप में है ये पूरे भारत का केंद्र स्थान था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। दूर दूर से लोग आते थे वहां शिक्षा अर्जन करने के लिए। तो जो भी टीचर वहां से गुजरता था तो निमाई जानबूझ के चिल्ला के बोलता था कि ऐसे बहुत हो गए शिक्षक जिन्होंने बस भट्टाचार्य पदवी प्राप्त की है, जिनको ना ज्ञान है ना कुछ है, ऐसे ऐसे। तो जो भी जाता था वो डर जाता था कि और कि मैं कुछ बोल दूंगा तो ये शेर के समान गर्जना कर देगा मेरे ऊपर। तो उनका अहंकार चूर्ण कर दिया लॉर्ड चैतन्य ने। कार शक्ति आछे विश्वम भरे रस समीपे सिद्धांत देवे कहे न आछे नवद्वीपे। तो किसी के पास शक्ति नहीं थी निमाई के पास जाकर उनकी सिद्धांत का खंडन करने की। यही मत आवेश बाखाने विश्वम्बर चारिदंड रात्रि तबु नाही अवसर। तो इस प्रकार से महाप्रभु आवेश में आकर इस प्रकार से वर्णन करने लगे। और काफी चार दंड मतलब काफी समय रात्रि का भी बीत गया था। दैव आर एक नगर यार दुयारे एक महाभाग्यवान आछे विप्रवरे। तो ये लोग जहां ये बैठे थे क्लास करने के लिए जिस घर के आंगन में, उसी के घर के साइड में एक महान ब्राह्मण का घर था जो महाभाग्यवान था। वो कहते हैं रत्नगर्भ आचार्य विख्यात तार नाम प्रभुर पितार संगी जन्म एक ग्राम। तो कहते कि वो ब्राह्मण कौन था जिसका नाम रत्नगर्भ आचार्य था और वो बहुत ये विख्यात नाम था उनका और बहुत फेमस भी थे वहां। और निमाई पंडित के पिता के मित्र थे और ये एक ही गांव में इनका जन्म हुआ था। तीन पुत्र तार कृष्ण मकरंद कृष्णानंद जीव यदुनाथ कवि चंद्र। तो रत्नगर्भ आचार्य के तीन पुत्र थे जो कृष्ण पद मकरंद, कृष्ण के चरणों में जो मकरंद है जो रस टपकता है, ऐसी सेवा में ये तीन भाई लगे हुए थे, जिनका नाम, एक का नाम था कृष्णानंद और एक था जीव और एक था यदुनाथ कविचंद्र। भागवत परम आदरे द्विजवर, भागवत श्लोक पढ़े करिया आदर। तो ये जो रत्न गर्भ आचार्य थे, उनका इतना अटैचमेंट था श्रीमद भागवतम को गाने में, तो कई प्रकार से श्रीमद भागवतम को गाते रहते थे। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने छह गोस्वामियों से रघुनाथ भट्ट को आज्ञा दी, तो रघुनाथ भट्ट केवल भागवत पढ़ते रहते थे, उनका कुछ और कार्य नहीं था, उन्होंने कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा, कोई शिष्य भी नहीं बनाए एक प्रकार से, और लेकिन वो गोविंद देव मंदिर में बैठ के श्रीमद भागवतम का गान करते थे। डिफरेंट 10 ट्यून्स में, 10 ट्यून में गाते थे। और प्रेम विलास में वर्णन आता है कि ये सारे जो रूप गोस्वामी वगैरह, ये छह गोस्वामी उनको राधा दामोदर मंदिर में इन्वाइट करते थे और ऐसा गोल बना के उनसे भागवत सुनते थे अलग अलग ट्यून्स में, और इन छह में कोई ना कोई मूर्छित हो जाता था हाँ सुनते सुनते। तो इस प्रकार से हमारी परंपरा में इस बात का एक बड़ा महत्व है, क्योंकि वो नॉर्मल रूप से हियरिंग नहीं करते थे। तो अभी क्या हुआ कि इस रत्न गर्भ आचार्य जब इनका यहाँ रहा है, तो वो वहां बैठ के श्रीमद भागवतम का श्लोक पढ़ने लगे, और वो श्लोक उन्होंने पढ़ा दशम स्कंद का, और वो थोड़ा ऊंची आवाज में पढ़ा। हाँ, वो श्लोक था, श्यामम हिरण्य परधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनोव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेन्धनान मुग्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। तो ये इस प्रकार से श्लोक पढ़ा, तो ये श्लोक वर्णन आता है कि जब ब्राह्मण थे यज्ञ पत्नियां और उनके जो ब्राह्मण थे, जब कृष्ण और बलराम गव्य चराने के लिए गए और उनको बहुत भूख लगी, तो ये सब बच्चों ने कहा कि हे कृष्ण हमें भूख लगी है, आप अभी अरेंज करो कुछ प्रसाद। तो कृष्ण ने कहा देखो नजदीकी जाओ, वहां ब्राह्मण लोग बहुत धनवान है और वो बहुत बड़ा यज्ञ अंगिरस नामक जो यज्ञ कर रहे हैं, आप जाओ और उनको कहो कि कृष्ण ने मंगाया है कुछ खाने की चीजें, क्योंकि यज्ञ में वो लोग दान देते हैं और बहुत सारे वैरायटीज के फूड उन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये गोप सखा सारे जाते हैं, काफी सारे श्रीदाम सुबल वगैरह, और वो जाके उनसे मांगते हैं कि कृष्ण और बलराम आए हैं जो बहुत भूखे हैं, आप दे दो। तो उन्होंने तुरंत उनको तिरस्कृत कर दिया कि नहीं आप नहीं दे सकते। तो ये बहुत दुखी हो गए, सारे बच्चे आ गए कृष्ण के पास। फिर कृष्ण ने कहा ये नहीं तो इनकी पत्नियों के पास जाओ, हाँ वो मेरी भक्त हैं बहुत बड़े। तो ये जाते और जैसे उनको बोलते हैं कि माता जी कृष्ण और बलराम यहाँ आए हैं, वो बहुत अधिक भूखे हैं, तो कुछ हमें प्रसाद और कुछ चीजें चाहिए खाने के लिए। जैसे उन्होंने कृष्ण और बलराम का नाम लिया, वो सारे ब्राह्मण की पत्नियां इतनी आनंदित हो, गोल्डन के बड़े बड़े थाले ले लिए चांदी और उसके, और जितनी चीजें बनाई थी पूरे डाले और पैक करके वो निकले। तो उनके बच्चे, उनके ससुर, उनके ऐसे काफी रिलेटिव्स उनको पकड़ पकड़ के खींचते थे, जाने नहीं देते थे। उन्होंने कहा नहीं अभी कुछ भी हो जाए हम जाएंगे। तो वर्णन आता है कि एक जो पत्नी, एक जो ब्राह्मणी थी, उसको नहीं जाने दिया, वो घर में ही उसको पकड़ के रखा। लेकिन सारी जो माताएं हैं वो गई ब्राह्मण ये गोप सखाओं के साथ। तो कृष्ण को जैसे गई ना, तो कृष्ण जिस फॉर्म खड़े थे, क्या किस स्टाइल में वो खड़े थे, क्या उन्होंने धारण किया था, उनका हाथ किसके कंधे पर था, दूसरे हाथ में क्या पकड़ा था, इस बात का वर्णन इस श्लोक में आया है कि कृष्ण ने क्या किया था। जैसे गई और कृष्ण को देखा, तो क्या देखा ब्राह्मणियों ने, वो ये श्लोक में बोला था, वो ब्राह्मण ने ये श्लोक बोला था ब्राह्मण ने कि उन्होंने देखा उन पत्नियों ने कि कृष्ण का श्यामल वर्णन है और उन्होंने पीताम्बर धारण किया है, उन्होंने वनमाला धारण की है, उन्होंने मुकुट धारण किया है और कई प्रकार से कलर से अपने आप को सजाया है, और आपने एक प्रिय सखा के कंधे पर अपना एक हाथ रखा है और दूसरे हाथ में एक कमल फूल लिए हुए हैं, और उनके मुख, उनके कपोल सब कुछ बड़ा आकर्षक लग रहा है, क्योंकि इन ब्राह्मणियों ने कभी कृष्ण को नहीं देखा था, क्योंकि ये थोड़े ऊंचे घराने के थे। लेकिन जो ब्रजवासी कुछ स्त्रियां थी, उनसे ये ब्राह्मणियां जाके सुनती थी केवल, उनसे सुनते थे कृष्ण के बारे में। तो इसलिए इनके हृदय में बहुत आसक्ति हो गई थी। तो जैसे इस रूप को देखा उन्होंने और इस रूप का जो वर्णन हुआ है इस श्लोक को उस ब्राह्मण ने पढ़ा, बल्कि निमाय पंडित यहाँ क्लास ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी कान उधर का श्रवण करने में लगे हैं। तो जैसे उस ब्राह्मण ने उच्चारण किया तो निमाय पंडित के कान में वो श्लोक चला गया। भक्ति योगे श्लोक पढ़े परम संतोषे प्रभु रे करने ते आसी करे ल प्रवेशे। तो वो श्लोक इतना भक्तिमय भावना से वो गा रहा था, जैसे कोई भक्त कीर्तन करता है पूरा भक्ति में हृदय को डाल देता है हरि नाम में। हाँ, तो हृदय और हरि नाम एक हो जाता है तो हमें भी हमारा हृदय भी सॉफ्ट होने लगता है उस कीर्तन को हम सुनते हैं। तो वो ब्राह्मण भी अब भागवत में उसका इतना रुचि था कि जैसे उसने गाया, क्योंकि वो भक्ति से निकल रहा था भागवतम के श्लोक बाहर, तो लॉर्ड चैतन्य के कान में वो घुस गए श्लोक। भक्ति रा प्रभाव मात्र सुनीला था किया से क्षण पड़े ले न मूर्छित हाइया। तो जैसे ही सुना उसी समय सारे स्टूडेंट्स के सामने जैसे वो पढ़ा रहे थे मूर्छित होकर निमाय पंडित गिर गए। सकल पढ़ुया वर्ग विस्मित हिला क्षण के अंतरे प्रभु बाह्य प्रकाशिला। तो ये ऐसा कभी देखा नहीं था। एक प्रकार से क्लास देते देते मूर्छित हो जाना, तो सारे जो शिष्यगण थे वो थोड़े से अवाक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। और उसी समय ये जो मूर्छित हो गए थे तुरंत जग गए अपनी उस अवस्था से। बाह्य पाई बल बल बले विश्वंबर गड़ा गड़ी जाय प्रभु धरनी ऊपर। अभी देखो पूरे चैतन्य भागवत में और आगे भी और संन्यास लेने के बाद भी चैतन्य चरितमृत कितनी बार पृथ्वी पर महाप्रभु ने हाँ लोटपोट हुए हैं, गड़ा गड़ी गए हैं, और उनका अंग कैसे कहते हैं मक्खन के जैसे सॉफ्ट है। जैसे मैंने वो कल वो पास टाइम बताया था कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जाके कुएं में गिरे थे, मक्खन के कुएं में जाके गिरे, तो कैसे उनको हाँ, तो इतना सॉफ्ट शरीर था उनका। लेकिन पृथ्वी भी क्या हो जाती थी, जैसे वर्णन आता है कृष्ण जब चलते थे तो उनके चरण इतने सॉफ्ट थे, इतने सॉफ्ट, हाँ, तो पृथ्वी भी बहुत सॉफ्ट हो जाती थी मक्खन की तरह जहां जहां कृष्ण के चरण पड़ते थे। और पृथ्वी देवी कभी उन चरणों को मिटाती नहीं थी, वो उसका अलंकरण था, अलंकृत हो जाती थी, शोभा पाती थी जब कृष्ण के चरण कपन उन सब स्थानों में पड़ते थे। तो वर्णन आता है कि वृंदावन में ऐसा कोई स्थान नहीं है और कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसके ऊपर कृष्ण नहीं चढ़े, जिसके फूल और फलों का उन्होंने आस्वादन नहीं किया, या जहां जहां उनके चरण नहीं पड़े सारे स्थानों में। यही तो ब्रज की, इसीलिए तो ब्रज भूमि ये विशेष है। तो इस प्रकार से महाप्रभु धरने पर गिर पड़े और बोलो बोलो ऐसा कहने लगे। प्रभु बोले बला बला बले विप्रवर उठिला समुद्र कृष्ण सुख मनोहर। तो ये बोलने लगे कि हे ब्राह्मण और बोलो आगे कहो। और जैसे रामानंद राय ने कहा कि आगे बोलो कि मुझे कृष्ण भक्ति का जो सागर है उसमें मैं आप्लावित हो रहा हूं। लोचने रजले हैला पृथ्वी संचेत अश्रुकंप पुलक सकल सुविदित। तो आंखों से इतने आंसुओं की धारा निकल रहे थे कि सारे पृथ्वी सिंचित हो गए थे। देखे विप्रवर तार परम आनंद पढ़े भक्ति श्लोक भक्ति सने करे रंग। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण भी देख के आश्चर्यचकित हो गया और उसको भी आनंद आने लगा और वो और कई सारे भक्ति के श्लोक और चांत करने लगा और महाप्रभु और अधिक सुनते जा रहे थे। देखिया तहन भक्ति योगे रठन तुष्ट है प्रभुता ने दिला आलिंगन। तो महाप्रभु ने जब देखा कि ये इतना भक्ति युक्त होकर ये गा रहा है तो महाप्रभु ने क्या किया, बहुत खुश हो गए, संतुष्ट हो गए और उन्होंने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया। तो इससे समझ सकते हैं कि हम गाते हैं या बजाते हैं या कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं तो हमें अपने हृदय को उसमें डालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भक्ति क्या है, भक्ति इज द अफेयर ऑफ हार्ट। तो भक्ति के लिए तो हार्ट ही चाहिए, आपका हृदय चाहिए। तो ये हृदय की चर्चा तो पूरे शास्त्रों में जहां तहां की है, तो हृदय में परिवर्तन लाना चाहिए लॉर्ड चैतन्य और जो भी आचार्यों ने हमें सिखाया है। तो इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण केवल गा रहा था उन श्लोकों को, तो इससे समझ सकते कि श्लोका याद करने का कितना इम्पोर्टेंस है हा? कि श्लोका याद करके उन्होंने महाप्रभु को आनंदित किया गाके। पाया वैकुंठ नायकेर आलिंगन प्रेमे पूर्ण रत्न गर्भ है लतकन। तो महाप्रभु तो प्रेम की मूर्ति है और वो किसी को आलिंगन करे तो फिर वो प्रेम से वो व्यक्ति भी भर जाएगा। इतना ही नहीं, महाप्रभु केवल स्पर्श करने मात्र से पागल की तरह बोलने लगता है। जैसे आपने वो पास टाइम सुना था कि चैतन्य महाप्रभु शाम के समय अपने भक्तों के साथ समंदर के किनारे जा रहे थे जगन्नाथपुरी में, तो भक्तगण बातें कर रहे थे स्वरूप दामोदर वगैरह, और अचानक महाप्रभु ने ऐसे देखा, जस्ट कहा देखा, समंदर की ओर देखा ऐसे, और ये दो तीन लोग जा रहे आगे, जैसे ऐसे देखा ना तो उनको वो सारा नीला दिखाई देने लगा समुद्र, और उनको यमुना का स्मरण हो आया कि ये यमुना है। ये दो तीन भक्त चर्चा करते जा रहे, महाप्रभु कब उनके बीच में से निकल गए और समुद्र में घुस गए इनको पता ही नहीं चला। और फिर ये सब लोग हैरान हो गए कि कहाँ गए। तो हर भक्त को अलग अलग दिशाओं में भेजा कि जाओ ढूंढो ढूंढो ढूंढो, तो मिल ही नहीं रहे थे। तो स्वरूप दामोदर को थोड़ी शंका हो गई कि ये जो चैतन्य महाप्रभु हैं ये जरूर समंदर में इन्होंने छलांग लगाई होगी। तो वहां से जहां छलांग लगाए वहां से 30-40 किलोमीटर दूर कोणार्क टेम्पल है, आप ओडिशा जाते हैं तो कोणार्क टेम्पल के पास एक मछुआरा था जिसने अपना जाल डाला और निकल खींच रहा था, अरे आज तो बड़ा हैवी कुछ बड़ा बड़ा मछली आने वाला है ऊपर। तो उसने देखा कि ये गोल्डन मछली आ रहा है इसमें, गोल्डन अवतार चैतन्य महाप्रभु, उनको पता नहीं था। और महाप्रभु इतने भाववेश में थे कि उनके ये जो जॉइंट्स हैं ये निकल जाते थे, ये सारे जॉइंट्स निकल जाते थे, हाथ ऐसे केवल ये जो चमड़ी है वो रह जाती थी लेकिन सारे जॉइंट्स निकल जाते थे, हाथ के पांव के सब कुछ, मतलब ऐसे लगता था कि एक कुछ अलग अलग चीजें हैं बोरी के समान जैसे, और फिर उनको आप उठा नहीं सकते, सीधा बोरी में बिठा के उनको ले जाना पड़ता था। तो ऐसी अवस्था में वो आए थे और उनका शरीर बिल्कुल में रहने के कारण चेंज हो गया था, और उस ब्राह्मण मछुआरे ने उनको खींचा, खींच के जैसे ही टच किया इसने तो इसको शॉक लग गया, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं तो शॉक लग जाता है, वैसे ही सारे इसमें प्रेम का संचार हो गया, कृष्ण प्रेम का। और ये जो ब्राह्मण है, ये जो मछुआरा है, वो चिल्लाने लगा, बड़बड़ाने लगा और सोचने लगा, अरे मुझे क्या हो गया, भूत लग गया, और वो समझता था कि ये भूत है। और इसने क्या किया, एक साइड में डाल दिया, सोचे ये भूत है शायद, एक साइड में डाल दिया अपना जाल वगैरह, और केवल उसके मुंह से हरी 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 ऐसे कई सारे निकलता था। तो ये स्वरूप दामोदर अपने भक्तों के साथ गए थे ढूंढने कि कहाँ है, तो इनको दूर से आवाज आएगी हरी हरी कौन, मछुआरा कैसे हरी हरी कह सकता है, तो जरूर यहाँ लॉर्ड चैतन्य ही होंगे। तो गए तो वो बड़बड़ाने लगा कि यहाँ मत आइए, यहाँ भूत है, देखो मेरी हालत क्या हो गई है। तो इन्होंने कहा कि मैं, स्वरूप दामोदर ने कहा कि मैं ओझा हूँ, मैं भूत को उतारने वाला हूँ। तो कहते हाँ, तो इन्होंने क्या किया, कुछ मंत्र ऐसे बोल दिया होगा, हरे कृष्णा मंत्र, और दो तीन चापट मार दी उसके इसमें। तो कहते कि देखो आपका ये भूत अभी चला जाएगा, और ये जो हरी हरी आप कह रहे हो ये तो चैतन्य महाप्रभु हैं। तो वो कहते कि कहाँ है वो, जो भूत आपको लगा है वो कहाँ है। तो वो ले गए तो वहां बिल्कुल मिट्टी और उन सबके जालों के बीच लॉर्ड चैतन्य बिल्कुल ऐसे ऐसे पड़े हैं, और सारे हाथ जॉइंट सब अलग हो गया है। तो निमाय ये जो स्वरूप दामोदर उठा के उनको ले आते हैं, सब भक्तजन रोते कि क्या हमारे प्रभु की क्या हालत हो गई है, और कुछ भी नहीं, अनकॉन्शियस। तो लॉर्ड चैतन्य को फिर से ये जॉइंट्स जोड़ने होते थे, तो फिर इनके भक्त क्या करते थे, कान में जोर से बोलते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार से जब महाप्रभु ने उस रत्नगर्भ आचार्य जो संस्कृत के भागवतम श्लोक पढ़ते थे उनको स्पर्श किया तो सारा कृष्ण प्रेम उनके हृदय में चला गया। ಪ್ರಭುರ ಚರಣ ಧರಿ ರತ್ನ ಗರ್ಭ ಕಾಂದೆ ಬಂದಿ ಹೈಲ ದ್ವಿಜ ಚೈತನ್ಯರ ಪ್ರೇಮ ಫಾಂದೆ. ಸೊ ಕಹತೆ ಕಿ ರತ್ನ ಗರ್ಭ ನೇ ಉನ್ಕೆ ಚರಣ ಪಕಡ್ ಕೆ ರೋನೆ ಲಗೆ ನಿಮಾಯಿ ಕೆ ಔರ್ ಅಭಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಮೇ ವೋ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯೆ ಥೆ ಬಂದಿ ಹೋ ಗಯೆ ಥೆ. ತೋ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಭಿ ಜೇಲ್ ಹೈ ಅಪ್ನಾ. ಹಾಂ, ಜೋ ಭಿ ಉಸ್ ಜೇಲ್ ಮೇ ಎಂಟ್ರಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಫಿರ್ ವೋ ಬಹುತ್ ಕಠಿನ್ ಹೈ ಬಾಹರ್ ನಿಕಲ್ನಾ ವೋ ಜೇಲ್ ಸೆ. ತೋ ಯೇ ಜೋ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೈ ನಾ, ಯೇ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೈ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮೇ ಏಕ ಸುನ್ ರಹಾ ಥಾ ಏಕ ಭಕ್ತ ಸೆ ಜೋ ವಿದೇಶೋ ಮೇ ಥೆ, ಲಂಡನ್ ಯಾ ಕಹಾ. ತೋ ಮೇ ಆಜ್ ಉಸ್ ಕಥಾ ಕೋ ಭಿ ಸೋಚ ರಹಾ ಥಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಮೇ ಸುನಾಓ, ಲೇಕಿನ್ ಆಪ್ಕೋ ಸುನಾತಾ ಹೂಂ. ಬಡೆ ಅದ್ಭುತ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಅದ್ಭುತ ಮೀನ್ಸ್ ಯೇ ಸಮಜ್ ಸಕ್ತೆ ಕಿ ಯೇ ಜೋ ಇಸ್ಕಾನ್ ಹೈ ಕೋಯಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಶನ್ ನಹೀ ಹೈ, ಯೇ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹೈ ಜೋ ಪೂರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೇ ಫೈಲಾ ಹುವಾ ಹೈ. ತೋ ಏಕ ಕ್ರೇವ್ ನಾವ್ ಕಾ ಕ್ರೇವ್ ನಾಮ್ ಕಾ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾ ಲಂಡನ್ ಮೇ, ಲಂಡನ್ ಯಾ ಅಮೇರಿಕಾ ಕಿ ಕಿಸಿ ಸ್ಥಾನ ಮೇ. ತೋ ಏನ ಕೇನ ಪ್ರಕಾರ ಏನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಕೆ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮೇ ಆಯಾ ಔರ್ ಭಕ್ತ ಬನ್ ಗಯಾ ಔರ್ ಘರ್ ಮೇ ಸಾರಿ ಕಿತಾಬೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಕಿತಾಬೆ ವಗೇರಾ ಔರ್ ಅಧ್ಯಯನ ಕರ್ನೆ ಲಗಾ. ಐಸೆ ಕಾಫಿ ಚೀಜೆ ಹುಯಿ ತೋ ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕೋ ಏಕ ಆದತ್ ಥಿ ಮಚ್ಲಿ ಮಾರ್ನೆ ಕಿ, ಫಿಶ್ ಫಿಶಿಂಗ್. ತೋ ಮಚ್ಲಿಯೋ ಕೋ ಮಾರನಾ ಔರ್ ಲೇ ಆನಾ ವಗೇರಾ ಐಸೆ. ತೋ ಯೇ ಛೋಟಿ ನೀ ರಹಾ ಥಾ, ಪೂರಾ ಸಾರೇ ಆರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ಪರಿವಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಕರ್ತಾ ಥಾ, ಲೆಕ್ಚರ್ ಸುನ್ತಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಅಟೆಂಡ್ ನೀ ಕರ್ ಯೇ ಛುಟ್ ನೀ ಪಾ ರಹಾ ಥಾ ಯೇ ಮಚ್ಲಿ ಮಾರನೆ ಕಾ ಜೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ. ತೋ ವೋ ತಂಗ್ ಆ ಗಯಾ ಔರ್ ಸಬ್ ಭಕ್ತ ಟೋಕ್ತೇ ರಹತೇ ಥೇ ಉಸ್ಕೋ. ತೋ ಇನ್ಹೋನೆ ಕಹಾ ಕಿ ನಹೀ ಅಭಿ ಮುಜ್ಸೆ ನಹೀ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ವಗೇರಾ ಯೇ ಕುಛ್ ಭಿ. ಉಸ್ನೆ ಘರ್ ಮೇ ಉನ್ಕೆ ಜೋ ಗೀತಾ ಥಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಾ ಮೇನೆ, ಔರ್ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಅಭಿ ಮುಜೆ ಯೇ ಸಬ್ ನಹೀ ಕರ್ನಾ ಹೈ, ಸಬ್ ಭಕ್ತೋ ಸೇ ದೂರ್ ಜಾನಾ ಹೈ, ಯೇ ಬಹುತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ವಾಲಾ ಕಾಮ ಹೈ, ಕಭಿ ಕಭಿ ಆಪ್ ಸೋಚ ಸಕ್ತೆ. ತೋ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಆಪ್ನಾ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಲಿಯಾ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಊಪರ್ ಉಸ್ಕಾ ನಾಮ್ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಥಾ, ಉಸ್ಕೋ ಏಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇ ಡಾಲಾ ಔರ್ ದೂರ್ ಜಾಕೆ ಏಕ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಥಾ ಉಸ್ಮೇ ಫೇಂಕ್ ದಿಯಾ ಉಸ್ನೆ, ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಮೇ ವೋ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಫೇಂಕ್ ದಿಯಾ. ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ಭೀ ಮೇ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಗಯಾ. ಔರ್ ಫಿರ್ ಉಸ್ನೆ ಕಹಾ ಯೇ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ನಜದೀಕ್ ನಹೀ ರಹನಾ ಹೈ ಮುಜೆ, ಪೂರಾ ಪರಿವಾರ ಕೆ ಸಾಥ್ 200 ಮೈಲ್ ದೂರ್ ವೋ ಜಾಕೆ ರಹನೆ ಲಗಾ. ನಯಾ ಘರ್ ವಗೇರಾ ಖರೀದ್ ಕೆ ಔರ್ ಸಬ್ ಕುಛ್, ಕಾರ್ ವಗೇರಾ ಸಬ್ ಕುಛ್ ಲೇಕೆ ಪುನಃ ಉಸ್ಕಾ ಜೀವನ್ ಶುರು ಹೋ ಗಯಾ. ತೋ ಐಸೆ ಉಸ್ಕಾ ಜೀವನ್ ಜಾ ರಹಾ ಥಾ, ಫಿರ್ ಕಿಸಿ ಭಕ್ತ ಸೆ ಮಿಲ್ತಾ ನಹೀ ಥಾ, ಔರ್ ಕೋಯಿ ಭಕ್ತ ಸಬ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಟೂಟ್ ಗಯಾ ಥಾ. ತೋ ಭಕ್ತೋ ಕೋ ಭಿ ಪತಾ ನಹೀ ಥಾ ಯೇ ಕ್ರೇವ್ ಕಹಾ ಚಲಾ ಗಯಾ, ಇತನಾ ಅಚ್ಛಾ ಭಕ್ತ ಥಾ. ತೋ ಕೋಯಿ ಐಸೆ ಜಾನ್ಕಾರಿ ನಹೀ ಥಿ, ಲೇಕಿನ್ ಅಚಾನಕ್ ಜೋ ಭಕ್ತ ಉಸ್ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ಥೆ ವೋ ಕುಛ್ ಸಾಲೋ ಕೆ ಬಾದ್, ಏಕ್ ದೋ ಸಾಲ್ ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕಿ ಫಿರ್ ಸೆ ಉಸ್ ವೋ ಭಕ್ತ ಕಿಸಿ ಮಂದಿರ್ ಮೇ ಮಿಲಾ ಉನ್ಕೋ. ತೋ ಉನ್ಕೋ ಪೂಛಾ ಅರೆ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಆಪ್ನೆ ತೋ ಸಾರಾ ಛೋಡ್ ಛಾಡ್ ಕೆ ಚಲೇ ಗಯೆ ಥೆ, ಔರ್ ಆಪ್ ಕೈಸೆ ಆ ಗಯೆ, ಫಿರ್ ಸೆ ಕೈಸೆ ಯಹಾಂ. ತೋ ಕಹತಾ ಕಿ ಯೇ ಜೋ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮೈನೆ ಜಾಯಿನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋ ಆಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಕರೋಗೆ ತೋ ಫಿರ್ ಆಪ್ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇ ಆಪ್ಕೋ ಕೈ ಸಾರಿ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಹೋ ಜಾತಿ ಹೈ, ಔರ್ ಫಿರ್ ಆಪ್ ಉಸ್ಕೋ ಛೋಡ್ ನಹೀ ಸಕ್ತೆ. ತೋ ಕಹತೆ ಮೇರಿ ಐಸಿ ಸ್ಥಿತಿ ಹೋ ಗಯಿ. ಕಹತೆ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಕಿ ಮೈ ಏಕ್ ದಿನ್ ಅಪ್ನಾ ಜೋ ಫಿಶಿಂಗ್ ಕರ್ನೆ ಗಯಾ, ಫಿಶ್ ಮಚ್ಲಿಯಾ ಮಾರನೆ, ತೋ ಮೈನೆ ಅಪ್ನಾ ನೆಟ್ ಡಾಲಾ ಥಾ, ಔರ್ ಜಾಲಿ ಡಾಲ್ತೆ ಹಿ ಯೇ ಕುಛ್ ಬಹುತ್ ಹೆವಿ ಚೀಜ್ ಉಸ್ಮೇ ಆ ಗಯಿ. ಬಹುತ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಹೆವಿ ತೋ ಮೈನೆ ಸೋಚ ರಹಾ ಥಾ ಆಜ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ ಹೈ ಇತನಾ ಬಡಾ ಕ್ಯಾ. ತೋ ಮೈನೆ ದೇಖಾ ಜೈಸೆ ಉಸೆ ಊಪರ್ ನಿಕಲ್ತೆ ಏಕ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಸ್ಮೇ ಥಾ. ತೋ ಮೈನೆ ವೋ ಬ್ಯಾಗ್ ಲಾಯಾ ಊಪರ್, ಉಸ್ಕೋ ಖೋಲಾ ತೋ ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಏಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಿಲಾ, ಔರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೈನೆ ಖೋಲಾ ತೋ ದೇಖಾ ಜೋ ಮೈನೆ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಫೇಕಾ ಥಾ ವಹಿ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ವಾಪಸ್, ಕಹತೆ ವಹಿ ಮುಜೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ. ಔರ್ ಕಹತೆ ಕಿ ಮೈನೆ ದೇಖಾ ಕಿ ನಹೀ ಅಭಿ ಯೇ ಜೋ ಮುಜೆ ಛೋಡನೆ ವಾಲೆ ನಹೀ ಹೈ. ತಬ್ ಸೆ ಕಹಾ ಮೈನೆ ಫಿರ್ ಸೆ ಅಪ್ನಾ ಘರ್ ವೋ ಚೇಂಜ್ ಕಿಯಾ ಔರ್ ಮಂದಿರ್ ಕೆ ನಜದೀಕ್ ಘರ್ ಲಿಯಾ ಔರ್ ಫಿರ್ ಸೆ ಜಾನೆ ಲಗಾ. ಔರ್ ಅಭಿ ವೋ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಡಿವೋಟಿ ಹೈ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಅಧಿಕ ಸೇವಾ ವಗೇರಾ ಕರ್ತೆ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ ಕಥಾ ಸೆ ಕೈ ಶಿಕ್ಷಾ ಭಿ ಹೋ ಸಕ್ತಿ ಹೈ. ಗ್ಲೋರೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಬುಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈ, ಕೃಷ್ಣ ಆಪ್ಕೋ ಕಭಿ ನಹೀ ಛೋಡೆಂಗೆ ಆಪ್ಕಾ ಪೀಛಾ, ಯದಿ ಆಪ್ ಥೋಡಾ ಭಿ ಆಪ್ನೆ ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಸರ್ವ್ ಕಿಯಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೆ ಪ್ರೇಮ ಮೇ ಯೇ ಜೋ ರತ್ನ ಗರ್ಭ ಆಚಾರ್ಯ ಹೈ ವೋ ಅಭಿ ಬಂದ ಹೋ ಗಯೆ ಥೆ, ಕೇವಲ ಮಹಾಪ್ರಭು